मुख्य समाचारों में न्यू साउथ वेल्स में लगभग 39,000 और विक्टोरिया में भी 22,000 से बस कुछ ही कम कोविड 19 मामले। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन का कहना है कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने चुनाव के लिए झूठ और छल का एक जाल बनाया और भारत में कोविड मामले 1,00,000 से ऊपर। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। नोवाक जोकोविच के ही संगरोध होटल में हिरासत में लिए गए शरण चाहने वालों का कहना है कि वो इस बात से दुखी हैं कि बोट से आए और शरण चाहने वालों के लिए ऑस्ट्रेलिया की नीति के तहत 9 साल के लिए इमिग्रेशन डिटेंशन में रहने की दुर्दशा और स्थिति के बारे में ऑस्ट्रेलियन केवल अब जान रहे हैं। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को सोमवार को उनके वीजा रद्द करने के मामले में अगली अदालत की सुनवाई तक मेलबर्न के पार्क होटल में रखा है। पार्क होटल में एक ईरानी शरण चाहने वाले मेहदी का कहना है कि ये 9 साल का कठिन समय रहा है।
And while Djokovic is here and suddenly people getting to know about what's going on about this. And to be honest, I find it kind of exciting. At the same time, I find it sad. I've been in detention for 9 years, though I never committed no crime in my whole life, though I've been a refugee by 2 countries and the UN itself, and just dozens of people are being held. It doesn't make sense. I cannot find no answer.
विक्टोरिया की कार्यवाहक प्रमुख जसिंता एलन का कहना है कि राज्य सरकार को फेडरल सरकार से टेनिस ऑस्ट्रेलिया को भेजे गए उन पत्रों की कोई जानकारी नहीं थी जिसमें कहा गया था कि एक पूर्व कोविड 19 संक्रमण को ऑस्ट्रेलिया में संगरोध मुक्त यात्रा के लिए वास्तविक छूट के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। बुधवार की रात नोवाक जोकोविच के ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर उनका वीजा रद्द होने के बाद उन्हें दी गई चिकित्सा छूट को लेकर जांच तेज हो गई है। सर्बिया के खिलाड़ी की कानूनी टीम ने फेडरल सर्किट कोर्ट में फैसले को चुनौती दी है। सुश्री एलन का कहना है कि विक्टोरिया सरकार ने मामले को उचित तरीके से संभाला।
The role of the panel was to assess the medical documentation, not to assess their eligibility for a visa, because that would not have been appropriate, because that is only the responsibility under our constitutional arrangements of the Commonwealth Government.
न्यू साउथ वेल्स राज्य में परीक्षण और अस्पताल प्रणालियों पर दबाव कम करने के लिए नए प्रतिबंध लगा रहा है। सकारात्मक रैपिड एंटीजन परीक्षणों को सकारात्मक पीसीआर परीक्षण के समान ही माना जाएगा और राज्य के दैनिक मामलों की संख्या में शामिल किया जाएगा। फरवरी के मध्य तक वैकल्पिक और गैर जरूरी सर्जरी स्थगित की जाएगी। 27 जनवरी तक आतिथ्य स्थलों पर शादियों को छोड़कर गायन और नृत्य की अनुमति नहीं होगी। शिक्षकों और नर्सों सहित फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए बूस्टर शॉट अनिवार्य होंगे। प्रीमियर डोमिनिक पेरोटेट का कहना है कि लोग सर्विस न्यू साउथ वेल्स के माध्यम से अपने सकारात्मक रैपिड एंटीजन परीक्षा परिणाम दर्ज कराने में सक्षम होंगे।
What we would say to people today as we move through this period, that if you do receive a positive rapid antigen test, that you register that through Service New South Wales and New South Wales Health. New South Wales Health and Service New South Wales have been working on and will be available next week, by mid next week, a system that if you do have a positive rapid antigen test, that you treat that as if it was a positive PCR test, and that you isolate in accordance with the rules that are in place.
नवीनतम रिपोर्टिंग अवधि में राज्य ने 38,635 मामले दर्ज किए हैं। इस बीच रैपिड एंटीजन टेस्ट में सकारात्मक परीक्षण करने वाले विक्टोरियन कोविड 19 रोगियों से नए रिपोर्टिंग नियमों के तहत अपने केस डेटा को प्रकाशित करने की उम्मीद की जा रही है। अपडेटेड प्रणाली के तहत विक्टोरिया में जो लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट से सकारात्मक संक्रमित हो जाने की पुष्टि करते हैं उन्हें 7 दिन के लिए आइसोलेट करना होगा और अपने करीबी संपर्कों को बताना होगा। कार्यवाहक प्रीमियर जसिंता एलन का कहना है कि विक्टोरिया के लोग अपने रैपिड टेस्ट परिणामों की रिपोर्ट आज से ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।
And if people who want some extra assistance to fill out this form, or indeed are seeking some translation services for our culturally and linguistically diverse community, we'd encourage those people to go to the hotline where they can get information and assistance on how to complete the form.
क्वींसलैंड सरकार का कहना है कि स्कूल वर्ष की शुरुआत में 2 सप्ताह की देरी हो सकती है क्योंकि अनुमान है कि महीने के अंत में कोविड-19 मामले चरम पर होंगे. वायरस को रोकने के लिए ये लागू किए जा रहे कई उपायों में से एक है क्योंकि राज्य में लगभग 11,000 मामले दर्ज किए गए हैं. अस्पताल में 313 लोग हैं और 14 गहन देखभाल में हैं. लोगों को घर से काम करने और अगले 6 सप्ताह के लिए कम से कम बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है. वैकल्पिक सर्जरी को भी निलंबित किया जा सकता है. प्रीमियर एनेस्थीसिया पैलेशे का कहना है,
We are looking at a 1 to 2 week delay in relation to the return to school. We will give you more concrete decisions on this over the coming days. But I just want to assure parents that that is definitely not on the agenda to send primary school children unvaccinated to school if we are in the peak of this wave. This is a common sense measure.
GPs राज्य और फेडरल सरकारों से आग्रह कर रहे हैं कि वो रैपिड एंटीजन टेस्ट से सकारात्मक परीक्षण करने वालों के लिए एक रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करने के लिए शीघ्रता करें. नए कोविड-19 मामलों का पता लगाने के मुख्य तरीके के रूप में PCR परीक्षणों की जगह रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए विक्टोरिया जैसे कुछ राज्य लोगों के लिए ये अनिवार्य कर रहे हैं कि वो अपने सकारात्मक रैपिड एंटीजन टेस्ट परिणाम की रिपोर्ट राज्य के स्वास्थ्य विभाग को फोन पर या ऑनलाइन करें. इस बीच प्रधानमंत्री ने बुधवार को लोगों को सकारात्मक घरेलू परीक्षण के परिणाम के साथ अपने GP से संपर्क करने के लिए कहा है ताकि डेटा एकत्र किया जा सके. लेकिन रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर्स का कहना है कि ये GPs पर बहुत अधिक दबाव डाल रहा है जो पहले ही उच्च मात्रा में कॉल्स ले रहे हैं. न्यू साउथ वेल्स और ACT में कॉलेज की अध्यक्ष शार्लेट हेस्पी का कहना है कि अधिक समर्थन की आवश्यकता है.
I think there's both a sense of, okay, I've got a positive test, so you can now link me into the system, which of course at this point in time there is no system to be linked into. We know what happened when there was just the sort of the vaccination debacle in terms of go ring your GP and nobody was ready and the phone lines all collapsed. And pretty much from what I can gather, hearing around the traps, that's pretty much what's happening.
भारत में एक बार फिर कोरोना वायरस के दैनिक मामलों की संख्या 1 लाख के पार हो गई है. आज शुक्रवार की सुबह तक पिछले 24 घंटों में भारत में 1,17,109 मामले सामने आए हैं. भारत के गृह मंत्रालय ने कल गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक की जाँच 3 सदस्यीय समिति करेगी. कमेटी जल्द से जल्द रिपोर्ट देगी. पंजाब की सरकार ने भी हाई लेवल कमेटी का गठन किया है. जांच टीम 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 6 जनवरी को हिंसक कैपिटल हमले की 1 साल की सालगिरह पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के झूठे प्रचार के परिणाम स्वरूप घातक विद्रोह हुआ.
About the 2020 election. He's done so because he values power over principle, because he sees his own interest as more important than his country's interest, than America's interest, and because his bruised ego matters more to him than our democracy or our Constitution. He can't accept he lost.
श्री बाइडेन ने कहा कि श्री ट्रंप ने वो किया है जो अमरीकी इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति ने कभी नहीं किया, यानी चुनाव के परिणामों और लोगों की इच्छा को स्वीकार करने से इनकार किया. राष्ट्रपति बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने महीनों तक अपने झूठ का प्रचार किया क्योंकि वो ये स्वीकार नहीं कर सकते थे कि वो चुनाव हारने जा रहे हैं. और अब बात ऑस्ट्रेलिया डॉलर की. ऑस्ट्रेलिया का 1 डॉलर अमेरिका के 71 सेंट और भारत के 53 रुपए 20 पैसे के बराबर है. खेल समाचारों में आशंका है कि कोविड 19 की वजह से महिला एशेज और विश्व कप में भी रुकावटें आ सकती हैं। महिला एशेज के अंत में कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण करने वाले ऑस्ट्रेलियन और इंग्लैंड खिलाड़ियों को विश्व कप में खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगले सप्ताह की शुरुआत में एशेज के लिए ऑस्ट्रेलियन टीम की घोषणा की जाएगी। खिलाड़ी 17 जनवरी को शिविर में जाने से पहले 7 दिनों के अलगाव की अवधि में रहेंगे। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शनिवार को पर्थ में धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में बादल रहेंगे, अधिकतम तापमान 25 डिग्री, न्यूनतम 16 डिग्री। मेलबर्न में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। होबार्ट में भी एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 18 डिग्री, न्यूनतम 15 डिग्री। कैनबरा में एक दो बौछारें, तूफान की संभावना, अधिकतम तापमान 30 डिग्री, न्यूनतम 17 डिग्री। सिडनी में बौछारें, तूफान की संभावना, अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री। ब्रिस्बेन में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 28 डिग्री, न्यूनतम 23 डिग्री। और डार्विन में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।